ओम शांति। आज 22 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है। क्यों? क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएं खा जाती हैं। वृद्धि करना माना नए नए आत्माओं को बाबा का संदेश देना, संभाल करना माना तो आ गए हैं जो बाबा के बच्चे बन गए हैं उनकी संभाल भी करनी, क्योंकि नहीं तो वो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। संभाल करना मतलब उनको देखते रहना, उनकी कोई कमजोरी है, कोई कमी है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, वो उनको स्पष्ट करे। क्योंकि जरा सा भी किसी को डाउट बैठा ये कपोड़े मारते हैं, बस वो फिर चला जाएगा। उनकी हर बात उनको स्पष्ट भी करना, ये संभालना होता है। प्रश्न, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते क्यों है? ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों है? क्यों मुरझा जाते हैं? क्योंकि उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई, डाउट बैठा, बस शक तो एक ऐसी बीमारी है जो
निकलता ही।
कारण और निवारण क्या, उसका कारण भी बताओ और फिर उसका निवारण भी बताओ। बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, बाबा तो ज्ञान के वंडरफुल राज समझाते हैं, परंतु वो ना समझने के कारण उनको समझ में नहीं आया तो संशय उत्पन्न होता है कि ये क्या बोलते हैं। इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, हमें तो इनकी बात समझ में नहीं आती। ये कहते कभी बाप है, कभी कहते पति है, कभी हमारे मूर्तियों को मानते नहीं है, हमारे शास्त्रों को मानते नहीं है, और नए पत्ते मुरझा जाते, फिर पढ़ाई छोड़ देते। इसमें समझाने वाले बहुत बहुत होशियार होने चाहिए, समझाने वाले बहुत होशियार होने चाहिए। अगर कोई संशय उठता है, मतलब आपको ही कोई संशय उठ गया है, तो आप बड़ों से पूछो, और बड़ा भी जवाब नहीं दे पाता है, उत्तर नहीं मिलता है, ब्रह्मा बाबा से पूछो। ब्रह्मा बाबा भी उत्तर नहीं दे पाता है तो मेरे से पूछो। लास्ट समय हाँ, बाबा से पूछो, पूछो उससे। गीत, प्रीतम आन मिलो ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, दुख में भगवान को सारे बुलाते हैं, भाई आजा भाई, तू ही है अब तो, और तो कोई आसरा है ही नहीं, तू ही आके हमें बचाएगा। दुख में भगवान को सभी बुलाते हैं, तुम्हारे पास तो वे बैठे हैं, वो बुलाते हैं, बैठ के पढ़ा रहा है तुम्हें, और बड़े आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। तुमको सभी दुखों से लिबरेट करे तुम जानते हो, बरोबर दुख धाम से सुख धाम ले जाने वाला एक बाप है, वो सुख धाम का मालिक बतला रहा है, जो सुख धाम का मालिक है, जो सुख धाम में ले जाने वाला है, वही बतला रहे हैं वो आया हुआ है, वो आया हुआ है, तुम्हारे सम्मुख बैठा हुआ है और राजयोग सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा ने हमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाया, राजयोग सिखलाया है। मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, मनुष्य मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। ये किसकी महिमा है? बरोबर बरोबर शिव बाबा की ये महिमा है। देवताएं तो सतयुग में होती, देवताएं तो यहां है ही नहीं। इस समय देवताएं होते ही नहीं तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही मनुष्य को देवता बनाते बनाएंगे। जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है वही मनुष्य से देवता बनाएंगे। तो कलयुग के इस दुख के समय में, पतित समय में कोई भी देवता यहाँ हो नहीं सकता। परमपिता परमात्मा जिसको शिव भी कहते हैं उनको यहाँ आना पड़े, इनको यहाँ आना पड़े पतितों को पावन बनाने के लिए। अब वो आए कैसे? प्रश्न ये खड़ा होता है कि वो आए तो आए कैसे? पतित दुनिया में श्री कृष्ण भी, श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके, शरीर नहीं मिल सकता। ये पतित दुनिया है, पांचों तत्व तमो प्रधान है। अब ऐसी दुनिया में श्री कृष्ण का भी तन मिल ना सके। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, अब तुम बच्चे सन्मुख सुन रहे हो, तुम इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। ये भी वंडरफुल बात है कि सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के पूरी दुनिया में इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जान पाया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों में भी वो आत्माएं जो मनन चिंतन करते हैं, निश्चय बुद्धि तो होंगे, मनन चिंतन करते हैं, वो इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। और इस सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने तीन लाइनों में दिया।
वो कौन सी तीन लाइन?
वो हमारी जो सृष्टि का चक्र है ना, ड्रामा व्हील, उसके नीचे ये तीन लाइनें लिखी हुई हैं कि आप यहाँ पहली बार नहीं आए। वो पीछे खड़ा है आपके, क्या नहीं? कोई बात नहीं। सृष्टि चक्र वाला चित्र देखा है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसके नीचे एक अद्भुत रहस्य लिखा हुआ है। पहले तरफ तो मेरे भाई झा हुआ सीढ़ी का चित्र है, आप चित्र भी नहीं पहचान पा रहे हो। हाँ, अब दिखाई दिया। चलो ध्यान दो, मतलब मेन बातें उन तीन लाइनों को ध्यान से सुन लो, मतलब आपको याद रहेगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर लिखा है एक अद्भुत रहस्य, उसके नीचे लिख दिया है आप यहाँ पहली बार नहीं आए, आप 5000 साल पहले भी इसी समय इसी प्रकार से आए थे और हर 5000 साल बाद आप आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। मतलब जो कुछ भी जहां है वो 5000 साल पहले वहां थी और फिर 5000 साल बाद आएगी, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो तारे हो, चाहे ग्रह हो, चाहे उपग्रह हो, चाहे एक छोटा सा पत्थर हो।
चांद स्थित है ना, वो तो परिवर्तन नहीं होते।
उनका परिवर्तन होता है ना भाई, यही तो वर्ल्ड की जो दुनिया वाले नहीं, यही तो सबसे बड़ी राज की बात है। देखिए कि जो कुछ अब चंद्रयान से चंद्रमा पर छोड़ के आ गए, 5000 साल बाद फिर वहां जाएगा वो, तो 5000 साल बाद फिर वहां जाएगा तो ये वापस आएगा तो जाएगा ना, ये चंद्रयान पर जो कुछ भी गाड़ी छोड़ के आए हैं, फिर रोवर बोलते हैं शिव शक्ति स्थान स्थल के ऊपर, तो वो यहाँ आएगा तो अगले 5,000 साल बाद उसको छोड़ने के लिए जाएंगे, वरना कैसे जाएंगे, दूसरा कैसे बन जाएगा, क्योंकि इसी को जाने ना, हू बहू है ना, ये हू बहू शब्द के अंदर सारा राज है। सूरज से जितनी रोजाना प्रकाश आ रहा है, ऊर्जा आ रही है, ये वापस जाएगी तो अगले कल्प में आएगी। आज यदि एक साइंटिस्ट बैठ करके किसी
सूर्य बंद को नहीं हो, उजाला तो बंद नहीं होगा ना, सूर्य तो परमानेंट प्रकाश देता रहेगा।
अभी जो परिवर्तन होगा, जब हम आत्माएं घर जाएंगी, उस समय जो एक साल का समय है, उस एक साल में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, वापिस अपनी उसी जगह पर आ जाएगा जहां 5,000 साल पहले था। तभी तो नया कल्प शुरू होगा। जो कुछ सूरज से यहां आ गया, वो इस एक साल के अंदर वापिस सूरज पर चला जाएगा, और जो कुछ हम कहीं छोड़ के आए हैं वो वापिस यहां आ जाएगा। जैसे उल्का पिंड गिरते हैं ग्रहों से, ठीक है, तो जो कुछ भी कहीं से यहां आता है उसको वापिस वहां जाना है। ये धरती के जो टुकड़े हैं, जो 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 आपके मकान में ईंटें लगी हैं, सामान लगा है, आप उस मकान में वही उसी समय वही ईंटें लगाएंगे जो 5,000 साल पहले लगाई थी। तो ये जो मकान में लगी हुई ईंटें हैं, लोहा है, पत्थर है, टाइल है, जो कुछ भी लगा हुआ है, सीमेंट है, ये वापिस अपनी जगह पर जाएगा, तभी तो 5,000 साल बाद वापिस आएगा। नहीं, वो ईंट खराब हो करके वापिस फिर बनेगी उसी प्रकार से, तो मतलब एक्यूरेट, तो मतलब है नहीं, ये राज है, मतलब इतना गुह्य राज है कि जो कुछ भी आप खा रहे हो ये 5,000 साल बाद आपके पास आएगा ना, वही सेब खाना है, और वो सेब बनने के लिए जो कुछ आपने खाया है वो खा कर, कोई टुकड़ा आपने कहीं पर गिरा दिया, कुछ खा लिया, कुछ कहीं कर दिया, ये वापिस जाएगा, फिर 5,000 साल बाद वहां उसी प्रकार से पहुंचेगा, उसी पेड़ से वही फल लगेगा और हमारे पास आएगा और हम उसे खाएंगे। ये है
5,000 साल बाद
मिलेगी। हाँ, सारे सारे जैसे पूरी जो भी जैसे बैठे हुए हैं सब वही होगा, आपकी कुर्सी भी यही होगी। हाँ, जो आपने टोपी पहन रखी है, मतलब ये इन तीन लाइनों में इतना गुह्य राज है, जो इसको विस्तार से समझाकर सबको समझा सकते हैं कि भी कैसे इतिहास और भूगोल रिपीट होता है। इन तीन लाइनों को जो समझ जाता है वो सबको समझा सकता है। जो मंदिर आपने बनवाया, जो मूर्तियां जैसे रखवाई, जो चक्कर आपने लगाए, जो सेना आपने बनाने में लगाई, वो सारी सेना फौज उसी प्रकार से वो सारे काम करेगी। जो कुछ आप करके आए हो वो सब वैसे के वैसे ही करोगे, हू बहु रिपीट होगा। मतलब हमें ये इतिहास और भूगोल है, धरती भी यही के यही होगी, यही धरती के टुकड़े अमेरिका अफ्रीका बनेगा, फिर यही धरती स्वर्ग बनेगा, फिर यही नरक बनेगा, और यही आत्माएं होंगी। अरे यही बात हम यही बात समझाएंगे। ज्योग्राफी जरूर होती है, मतलब इससे समझ में आता है कि हम पहली बार देवता नहीं बन रहे हैं, हर 5,000 साल बाद हम देवता बनते हैं, फिर धीरे धीरे पतित हो जाते हैं, फिर परमात्मा आते हैं, हमको देवता बनाते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी होती है मनुष्य सृष्टि में, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी होती भी सिर्फ कहाँ है, इस मनुष्य सृष्टि में, कोई परम धाम में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, सूक्ष्म वर्तन में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, क्यों, वो तो अवस्थाएं हैं, वो कोई जगह तो है ही नहीं, वो अवस्था है, वो अवस्था आत्माओं की है, वो अवस्था उसी प्रकार से उस समय बनेगी जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर की सूक्ष्म वतन की कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होगी, वह है सूक्ष्म वतन। वहां तो मूवी है, मूवी वहां तो है, मूवी टाकी तो यहाँ है। अब बाबा तुम बच्चों को सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी और मूल वतन का समाचार, जिसको तीन लोक कहते हैं, सब सुनाते हैं। अब तुम ब्राह्मणों का नया झाड़ है, इसको झाड़ कहा जाता है। दूसरे जो मठ पंथ है उनको झाड़ नहीं कहेंगे, बल क्रिश्चियन लोग हैं वो जानते हैं कि क्रिश्चियन ट्री, वो भी एक क्रिश्चियन ट्री रखते हैं, अलग है। उसके ऊपर वो घंटियां लटकाएंगे, फूल लटकाएंगे, गिफ्ट लटकाएंगे और वो क्रिसमस ट्री पर, क्रिसमस डे पर बांटेंगे सबको। लेकिन उनको ये पता नहीं कि सभी टाल टालियां इस बड़े झाड़ से निकली हुई, वो टाल टालियां हैं। जितने भी धर्म पंथ हैं वो इस सनातन धर्म की टालियां हैं, ठीक है, डालियां हैं, डालियां कहो टालियां कहो। समझाना चाहिए मनुष्य सृष्टि कैसे पैदा होगी, फिर नई सृष्टि कैसे पैदा होगी, ये भी उनको समझाना चाहिए। मात पिता फिर बालक तेरे, तुम्हारी शरण में सुख गनेरे। वे भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, सारे इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, दो से चार पत्ते होते हैं, पहले दो पत्ते होते हैं। दो पत्ते कौन से हैं शिव बाबा से? दो पत्ते शिव बाबा से निकलते हैं, जो कृष्ण और राधा। हाँ, वो तो ब्रह्मा सरस्वती तो झाड़ उसमें बैठे ना, जड़ में बैठे हैं, वो तो जड़ में बैठे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, वो फूटेंगे तो वो राधा और कृष्ण बनेंगे। वो तो सुधारा जा रहा है ना, वो तो गल गए, काले हो गए, पतित हो गए। जब एकदम झाड़ जड़ जड़ी भूत हो जाता है तो उस बीज खाद में फिर से नए पत्ते पैदा किए जाते हैं ना, तो ब्रह्मा सरस्वती नए पत्ते के रूप में, राधा कृष्ण के रूप में आते हैं। आत्मा तो वही है परंतु वो पतित अवस्था है, और फिर जड़ के अंदर उनकी पालना, जैसे बीज को बोया जाता है फिर पाला पोसा जाता है फिर बीज फूटता है, तो वो पत्ते तो बाहर निकलेंगे ना, पत्ते हैं राधा कृष्ण, वो है जड़ के अंदर बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं।
दो पत्ते,
वे भी सब इकट्ठे तो नहीं निकलेंगे, दो से चार पांच होते जाते हैं, फिर कोई को तो चिड़िया भी खा जाती है,
चिड़िया खा जाती है।
हाँ, यहाँ भी चिड़िया खा जाती है, यहाँ भी
खा
जाता। हाँ, ये बहुत छोटा झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे जैसे पहले पाया है। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज है, तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, त्रिलोकी नाथ हो अर्थात तीनों लोकों को जानने वाले। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो जानते नहीं। हम जानते हैं इसलिए हम त्रिलोकी नाथ हैं, जो नहीं जानते वो त्रिलोकी नाथ नहीं है। जो तीनों कालों को जानता है वो त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को नहीं जानता वो त्रिकालदर्शी कैसे?
लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे?
वो ना त्रिकालदर्शी है ना त्रिलोकी नाथ है। मनुष्य फिर श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहते हैं, जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी, जो सर्विस करेंगे उनकी प्रजा बनेगी। अपना वारिस भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, तो ये बुद्धि में होना चाहिए, हम त्रिलोकी नाथ हैं, हम त्रिलोकी नाथ हैं। ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं, ये बातें बड़ी वंडरफुल हैं। बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते।
बीच में बोल रहा हूँ, लक्ष्मी नारायण भी तो ये बाबा को अटेंडेंस करके तो बना है ना।
हाँ,
तो फिर उसको भी तो ज्ञान होना चाहिए, आप कहते हो उसको पता ही नहीं।
वो जो है ना, जब संसार परिवर्तन होता है, कृष्ण की आत्मा अपने शरीर को छोड़कर घर जाती है, परम धाम जाने का मतलब सब कुछ भूल जाना। फिर केवल वो आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर के आती है। बाबा ने इसलिए बहुत
भूल जाते होंगे,
सब भूल जाते हैं यदि उनको, क्योंकि वो जब वापिस आते हैं तो बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया, वो अपना शरीर पहनकर खड़े होते हैं। अब जिस दुनिया को वो यहाँ देखते थे रोजाना, वो दुनिया वापिस आने पर उनको नहीं मिलती। वो आत्माएं केवल मिलती हैं जो 100% प्योर थी, जो सतयुग में आनी थी। अब सतयुग में आने के बाद पहले दिन मुरली के अंदर बाबा ने स्पष्ट किया, उन्हें नहीं पता होता कि कौन मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, कुछ नहीं पता। तो अब उनकी शादी कौन कराए, कौन क्या है, किसी को नहीं पता, ठीक नहीं। सारे उठ करके तो खड़े हो गए, तो फिर उसके लिए हमने बात की थी कि कैसे वो फिर एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के संपर्क में कैसे आएंगे। हाँ जी, आंख न जाने दिल पहचान, मतलब आंख नहीं जानती कि ये कौन है, परंतु दिल अंदर से पहचानता है और उससे हम मिलते हैं और आपस में संबंध बनाते। बाकी कोई आकर के उनका वो नहीं करता कि कारोनेशन करे, बिठाए, ग्रुप बनाए, हाँ जी लक्ष्मी आप स्वयंवर होगा, लक्ष्मी नारायण को चुनेगी, नहीं। स्वयंवर मतलब स्वयं ही किसी वस्त्र को या किसी चीज को स्वीकार करना, स्वयं। तो उन्होंने स्वयं ही एक दूसरे को क्या किया, स्वीकार किया, ठीक है आज से हम अपना मिल करके रहेंगे, तो नया जीवन शुरू होता है और स्वयं ही वो अपना राजा चुनते हैं और स्वयं ही अपने जीवन को चलाते हैं। तो मतलब आरंभ होता है तो वही लोग जो आते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता कि कौन कौन है, और सभी नर नारायण और सभी नारियां लक्ष्मी कहलाती हैं। वहां कोई नाम अलग होता है फिर उनके शरीर के, तो इस प्रकार से ये दुनिया शुरू होती है। तो उनको कुछ नहीं पता कि भगवान कौन है, वो भगवान को भी नहीं जानते, परमात्मा के तो मेरे को भी नहीं जानते, सिर्फ उनको इतना पता है कि हम आत्मा हैं और हम इस संसार में खेल करने के लिए आए हैं, बस नाटक करने के लिए आए।
सारी आत्माएं जैसी होती हैं, सारी आत्माएं जो परम धाम से आती हैं,
हाँ,
सारी अपना शरीर पहन के खड़ी होंगी।
जो पहले दिन आएंगी वो सारे अपना शरीर पहन कर खड़े होंगे ना, बाकी तो उनके पास आकर जन्म लेंगे। 9 लाख का कोई पता नहीं। अब वो जितने भी आत्माएं होंगी, मतलब वो आकर के खड़ी, अपना शरीर पहन करके खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि 9 लाख शरीर सुरक्षित छोड़ के जाने का मतलब है कि 18 लाख एडवांस पार्टी की आत्माएं चाहिए जो उनको जन्म दे। और अभी ब्रह्मा कुमारी जो हमारा रजिस्टर है उसके हिसाब से ज्यादा ज्यादा 12-15 लाख रजिस्टर के हिसाब से। अब बाकी तो घर बैठे कर रहे हैं, वो उनका अलग पार्ट है, परंतु वो आत्माएं 18 लाख तो पहले उनको जन्म देने वाले चाहिए जो यहां से धारणा करके पवित्र बन के जाए और निर्विकारी संतान उत्पन्न करने वाले बने। इसलिए 9 लाख को जन्म देना माना एक लंबा टास्क है, और जो इन कुछ टाइम में तो बड़ा मुश्किल है यदि संगम 100 वर्ष का है। अब संगम 100 वर्ष से 1 सेकंड फालतू नहीं हो सकता, बाबा ने कहा। तो इसलिए शुरू शुरू में चाहे मतलब 108 हैं, चाहे 16,108 हैं, चाहे जितने भी आए, वो ड्रामा में क्योंकि बाबा ने कोई राज खोला नहीं है, तो हो सकता है कि 150 साल में 9 लाख हो जाए। तो उसके लिए भी फिर प्रश्न खड़ा होता है कि जब हर एक ने 2 बच्चे ही जन्म देने हैं तो 150 साल में 9 लाख कैसे हो जाएंगे, और वो जन्म भी 60 साल की उम्र में देते हैं। ये तो है नहीं कि ठीक है जी 15 साल में 20 साल में शुरू कर दे बच्चे पैदा करना, मुसलमान वाला काम भी नहीं है। तो कहने का मतलब कि कितने बच्चे पैदा किए जाओ, लिमिट है कि हर एक 2 ही बच्चे पैदा करेगा, एक लड़की और एक लड़का, और बाकी जो व्यवस्था होगी वो बाबा ने यहाँ कोई राज खोला नहीं है। तो जैसा होगा जितने होंगे वो वहां होंगे, क्योंकि भाई बहन अपने हिसाब से प्रश्न पूछते हैं, तो हमें समझ लेना है कि जो आएंगे वो पवित्र होंगे, वो अपना शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे, बाकी उनके पास आकर के जन्म लेंगे। लेकिन आगे फिर जैसे संसार चलना है वो चलेगा, बच्चे पूरी रीति समझे, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते, बच्चे पूरी रीति समझा नहीं सकते तो कंस्ट्रक्शन के बदले डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, बजाय इसके कि नए पेड़ पौधे नए नए झाड़ लगाना, नए आत्माओं को इकट्ठा करने के बजाय वो जो आ रहे थे ना उनको भी भगा देते हैं, उनको भी चिड़िया खा जाते, निकले हुए पत्तों को भी मुरझा देते, क्योंकि उनका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वो छोड़ के चला जाएगा। इनकी बेकार बातें हैं सारी, तो संशय बुद्धि बना देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। हम कहेंगे कल पहले भी ऐसा हुआ था, बीती सो बीती देखो, बीती सो बीती, जो बीत गया ना हो गया, खत्म बात, उसको दिमाग में मत रखो नहीं तो दिमाग भारी हो जाएगा। अब तुम बच्चे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो कि कैसे ये सारा संसार चलता है, सारी कहानी आपकी बुद्धि में बैठी हुई है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जानते हो, तुम इतिहास भी जानते हो, भूगोल भी जानते हो, इस पृथ्वी के बारे में भी जानते हो, सारे संसार में कैसे होगा, ये धरती फिर से टूटेगी फिर से जुड़ेगी, फिर से टूटेगी फिर से जुड़ेगी, फिर से हम देवता बनेंगे फिर पतित बनेंगे, यही इतिहास है। मनुष्य का कैसे कैसे चला ये इतिहास कहलाता है, धरती का संसार का कैसे चला ये ज्योग्राफी कहलाता है। तो इसको सारा तुम जानते हो, लक्ष्मीनारायण भी नहीं जानते, बाकी मनुष्य बातें तो बहुत बनाते रहते हैं ना, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नाटक बना देते हैं। भारत में बहुतों को अवतार मानते, इतने अवतार कर दिए गिनती नहीं कर सकते, 24 का गिनती नहीं कर सकते, 24 अवतार की बात नहीं है, जो भी है सारे अवतार हैं, परशुराम भी अवतार है, राम भी अवतार है, कृष्ण भी अवतार है, ये व्यास भी अवतार है, वाल्मीकि भी अवतार है, जितने सारे गुरु हैं सारे अवतार हैं, गुरु नानक भी अवतार है, स्वामी दयानंद भी अवतार है, जितने भी हैं सबको उन्होंने अवतार बना दिए कि आकर के अपना धर्म स्थापन किया। भारत ने ही अपना बेड़ा गर्क किया है। अब तुम बच्चे खास भारत को आम दुनिया को सेल्वेज करते हो, ये दुनिया का चक्र फिरता है, हम ऊपर होंगे तो नरक नीचे होगा, जैसे सूर्य उतरता है तो कहेंगे समुद्र के नीचे जाता है, परंतु जाता थोड़ा ही है, समुद्र में थोड़ा चला जाता। समझते हैं द्वारिका आदि डूब गई, मनुष्यों की बुद्धि भी वंडरफुल है ना। अब तुम जानते कि तुम कितने ऊंच जानते हो, कितना खुशी होनी चाहिए, दुख के समय तुमको लॉटरी मिल रही है, देवताओं को तो मिली हुई है, यहाँ तुमको दुख से फिर अथाह सुख मिलते हैं, कितनी खुशी होती है भविष्य 21 जन्मों के, भविष्य 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्य कहते हैं गीता का ज्ञान तो सत्संग है, गीता का ज्ञान तो सत्संग है, कितने सत्संग साईं बाबा आदि के हैं, जो साईं बाबा के हैं उसे सत्संग कहेंगे, क्योंकि वो सत्य परमात्मा का संग नहीं है। बहुत दुकानदारी है, ये सब दुकानें खुली हुई हैं, ये तो एक हट्टी है ब्रह्मा कुमारियों की, जगत अंबा है ब्रह्मा की मुख वंशावली, जगत अंबा ब्रह्मा की मुख वंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी मशहूर है। तुम जानते हो माता पिता से हमें सुख घनेरे मिले हैं, अब माता पिता मिला हुआ है, वो गाते थे माता पिता से सुख घनेरे मिले, पर तो अब तो वे माता पिता तुमको मिला हुआ है, बहुत सुख घनेरे दे रहे हैं। अच्छा माता पिता को जन्म देने वाला कौन, वो माता पिता ब्रह्मा और सरस्वती, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी और वो हमारे माता पिता साकार में, और उनको जन्म देने वाला कौन, शिव बाबा, हमको रत्न शिव बाबा से मिलते हैं, ज्ञान के रत्न शिव बाबा से मिलते हैं। तुम हो गए पोत्रे पोत्रियां, हम अब सुख घनेरे उस बेहद के बाप से ब्रह्मा सरस्वती मात पिता द्वारा ले रहे। ये मात पिता के माध्यम से हमें मिल रहा है शिव बाबा के द्वारा, देने वाला वो है। कितनी सहज बात है, फिर समझाना है ये बात, फिर सबको समझानी है। हम इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं फिर सुख घनेरे पाएंगे। हम भारत के सेवक ठहरे, हम भारत के क्या हैं, सेवक ठहरे, तन मन धन से हम सेवा करते हैं। गांधी को भी मदद करते थे ना, गांधी को भी मदद करते थे ना, तुम समझा सकते हो। यादव कौरव पांडव क्या करते थे, यादव कौरव पांडव क्या करते थे, पांडवों की तरफ तो है परम पिता परम आत्मा। पांडव है विनाश काले प्रीत बुद्धि, कौरव और यादव है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो परम पिता परमात्मा को मानते ही नहीं, ठिककर भीतर में ठोक देते हैं तुम्हारी उनके सिवाय और कोई के साथ प्रीत नहीं है। तो बहुत हर्षित रहना चाहिए, नाखून से लेकर पैर के जो नाखून होते हैं चोटी के आखिरी बाल तक खुशी रहनी चाहिए। इतनी खुशी रहनी चाहिए कि ये सारे दोनों
नाखून से लेकर चोटी तक,
हाँ पैर के जो नाखून है ना, जो शरीर से अलग है, दोनों डेड सेल है, मतलब नाखून भी हमारे शरीर का डेड पार्ट होता है और बाल भी हमारे शरीर का डेड पार्ट होते हैं। मतलब पूरे शरीर में क्या होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। बच्चे तो बहुत है ना, तुम मात पिता द्वारा सुनते हो तो तुमको खुशी होती है। सारी सृष्टि में हमारे जैसा सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हमारे में भी कोई पद्मा पद्म भाग्यशाली, कोई सौभाग्यशाली, कोई खाली भाग्यशाली और कोई फिर दुर्भाग्यशाली भी है। मतलब नंबर वार है सब। जो आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं उनको कहेंगे महान दुर्भाग्यशाली, छोड़ के चले जाते। हाँ, कोई ने कोई कारण से बाप को तलाक दे देते हैं, हारकती दे देते हैं। बाप तो बहुत मीठा है, समझते हैं शिक्षा दूं तो कहां फारकती ना दे देने। बाबा इसलिए धीरे धीरे समझाता है थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि सारी एकदम समझा देवे तो सारे भाग जावे। बाबा को भी डर लगता है, वैसे है निर्भय, बाबा है निर्भय तो उसको भी डर लगता है। सोच सोच के बोलता है, समझाता है, पर तू सोचता भी नहीं है, कमाल की बात है। सोचता भी नहीं, कहता मैं एक सेकंड पहले भी नहीं सोचता कि क्या बताऊं, मेरे में सब नूंद है, मैं उसी प्रकार से एक्यूरेट आकर के समझाता हूं। समझाते हैं तुम विकार में जाकर कुल कलंकित नहीं बनो, कुल का नाम बदनाम नहीं करना। अगर नाम बदनाम करेंगे तो फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। उसे कहा जाएगा सतगुरु का निंदक छोड़ ना पाए। उन्होंने फिर अपने लौकिक गुरु के लिए समझ लिया कि हमारे गुरु के कहना नहीं मानेंगे तो उसको फिर भगवान कोई जगह नहीं देगा। सतगुरु मैं हूं, कोई दुनिया का देहधारी सतगुरु नहीं हो सकता। उन्होंने अपने गुरु को समझ लिया है। अबलाओं को पुरुष भी डराते हैं। अमरनाथ बाबा अभी तुमको अमरनाथ अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तो टीचर सर्वेंट हूं ना, मैं तो टीचर तुम्हारा सर्वेंट हूं ना। टीचर के पांव धोकर पीते हैं क्या, कोई टीचर के पांव धोकर पीता है, नहीं पीता। बच्चे जो मालिक बनने वाले हैं क्या हम उनसे पांव धुलाऊं, जो मेरे मालिक बनने वाले हैं उनसे पांव धुलाऊं, नहीं। काया भी जाता है निराकार निरहंकारी, ये भी ब्रह्मा भी उनके संग में निरहंकारी बढ़ गया। शिव बाबा के संग में रहकर, क्योंकि शिव बाबा को देखा कि कोई अहंकार नहीं है, तो वो भी निरहंकारी बन गया। अबलाओं पर अत्याचार भी गाया हुआ है, कल्प पहले भी अत्याचार हुए थे, रक्त की नदियां बहेंगी, पाप का घड़ा भरेगा। अभी तुम योग बल से बेहद की बादशाही लेते हो, तुम जानते हो हम बाप से अटल अखंड बादशाही लेते हैं, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। हाँ, इसमें हिम्मत भी चाहिए। ये नहीं है क्या हो कि हम फर्स्ट आएंगे तो फर्स्ट लाइक बनने के लिए पढ़ाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अपना मुंह देखते रहो कि कितने दाग लगे हुए हैं। अपना मुंह देखते रहो, हमारे में कोई विकार तो नहीं है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। कोई भी बात ना समझो तो बड़ों से पूछो, अपना संशय मिटाओ। अगर ब्राह्मणी संशय मिटा नहीं सकती तो फिर बाबा से पूछो। अभी तो तुम बच्चों को बहुत कुछ बातें समझने की हैं, जहाँ तक जिएंगे बाबा समझाते रहेंगे। बोलो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जितना हमें समझ में आया उतना हमने आपको बता दिया, और हम पूछेंगे बाबा से फिर आपको बता देंगे। बाबा से हम पूछेंगे, या तो बोलो ये बातें अब तक बाबा ने बताई नहीं है, समझाई नहीं है, तो हम आपको कैसे बता देंगे। आगे चलकर समझाएंगे, फिर पूछना। बहुत पॉइंट्स निकलती रहती हैं। कोई कहेंगे लड़ाई का क्या होगा, बाबा त्रिकालदर्शी है, समझा सकते हैं, परंतु अभी तो बाबा ने बतलाया नहीं। अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। हम तो अर्जी डाल देते हैं कि बता दो कि क्या होगा। और अपने को छुड़ा लेना चाहिए, नहीं तो कहेंगे तुम्हें कुछ नहीं आता, ब्रह्मा कुमारी को कुछ नहीं आता, सारे जितना मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया, बाकी बाबा बताएंगे तो हम आपको सही। गार्डन में बाबा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि बाबा है ज्ञान का सागर, तो जरूर वो ज्ञान डांस करता होगा। बाबा क्या करता होगा, करता है ज्ञान डांस। बाबा ज्ञान डांस कैसे करता है, ये ज्ञान सुनाते वक्त नाचता रहता है। अच्छा, अच्छा, जबकि भक्ति मार्ग में शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखलाना है। क्वेश्चन पूछा, ये क्या क्वेश्चन पूछा है, शिव बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करने का पाठ बजाते हैं, तो उस समय उनको ये संकल्प होगा कि हमको भारत में संगम पर जाकर बच्चों को राजयोग सिखलाना है।
नहीं होगा।
स्वर्ग का मालिक बनाना है, ये संकल्प उठेगा वो जब आने का समय होगा, पहले नहीं, तब संकल्प उठेगा, बस आ जाए। विचार है, ये संकल्प नहीं होगा। भल उसमें ज्ञान मर्ज है, बाबा में ज्ञान मर्ज है, परंतु इमर्ज तब होता है जब आने का समय होता है। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है, तो जो हमारा पार्ट जिस समय बजाना होता है वो इमर्ज हो जाता है, हम वही पार्ट बजा देते हैं। ऐसे तो हमारे में भी 84 जन्मों का पार्ट मर्ज है ना, गाया भी जाता है, भगवान को नई सृष्टि रचने का संकल्प उठा, सो तो जब समय होगा तब संकल्प चलेगा। वे भी ड्रामा में बंधायमान है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि क्लास ये 13 जनवरी 1969 की है। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाबा पूछते हैं, बच्चे शिव बाबा को याद करते हो, फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो, बेहद के बाप का नाम शिव है, फिर भाषा के कारण अलग अलग नाम रख देते हैं। जैसे मुंबई में बबुल नाथ कहते हैं, क्योंकि वो काटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में है फूल, यहाँ सभी हैं काटे। तो बाबा रूहानी बच्चों से पूछते हैं, बेहद के बाप की याद में कितना समय रहते हो? उनका नाम है शिव, कल्याणकारी। तुम जितना याद करेंगे उतना जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। सत्युग में पाप होते ही नहीं, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया और ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पाप कराने वाले हैं 5 विकार। सत्युग में रावण होता ही नहीं, ये है सारी दुनिया का दुश्मन। रावण है सारी दुनिया का। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य, सभी दुखी, तमो प्रधान है। तब कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो, एक को याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। बाप खुद कहते हैं, देह सहित सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर रावण के बंधन में आए हो, फिर अभी सुख के संबंध में आना है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ। इस शरीर में प्रवेश किया है। तुमको समझाने लिए बाप कहते हैं, पवित्र बनने बिगर तुम मेरे पास नहीं आ सकते। आप पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो, मतलब मेरी श्री मत पर चलो। भक्ति मार्ग में भी सिर्फ मेरी पूजा करते हैं। उनको अव्यवचारी पूजा भी नाम दिया है। उनको अव्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अब भी मैं पतित पावन हूँ तो तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। सन्यासी कब राज योग सिखला ना सके, बाप ही सिखलाते हैं। वास्तव में ये शास्त्र भक्ति आदि प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। सन्यासी तो जंगल में जाकर बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूँ, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम और जेट सामने है, जितना पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। अलफ है एक बाप, अल्लाह अल्लाह एक बा। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, ये है बेहद का बाप, बेहद की आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को क्या करते हैं, वर्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता, ये बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सब आत्माएं वापस घर चली जाएंगी। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति, गति सदगति अक्षर है। शांति धाम सुख धाम, मुक्ति गति शांति धाम, बाकी जीवन मुक्ति क्या बोलते हैं, एक गति हो गई सदगति, सदगति ये जो है ना बाप ही आकर देते। बाप की याद बिगर घर
जा नहीं सकते।
आत्मा को पवित्र जरूर बनना है, यहाँ सभी नास्तिक है, यहाँ सब नास्तिक, कोई भगवान को जानता ही नहीं, बाप को नहीं जानते। तुम अभी आस्तिक बनते हो क्योंकि तुम्हें बाप की पहचान मिली है। गायन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अभी विनाश काल है ना, चक्कर जरूर फिरना है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि है वे है विजयंती। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु माया रावण क्या करती है, बुला देती। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है, वो है अमर लोक, वहां काल होता ही नहीं। बाप को कहते हैं आओ साथ में, हम अब सभी को ले चले, ले चलो तो काल ठहरा ना। सतयुग में कितना छोटा झाड़ है, अभी बहुत बड़ा झाड़ है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है, विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि है नहीं, वहां ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर है, वहां ना ब्रह्मा है ना विष्णु है ना शंकर। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, स्थूल वतन सूक्ष्म वतन मूल है ना, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में है मूवी। ये समझने की बातें हैं, ये गीता पाठशाला है जहां तुम राजयोग सीखते हो, जहां तुम राजयोग सीखते हो। शिव बाबा पढ़ाते हैं तो जरूर शिव बाबा ही याद आएगा ना, जो आपको पढ़ाएगा वही तो याद आएगा ना। अच्छा रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, दुख के समय अपार सुखों की जो लाठी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है, सदा खुशी में रहना है। नंबर दो, बाप दादा समान निराकारी और निरहंकारी बनना है, हिम्मत रख विकारों पर जीत पानी है। योग बल से बादशाही भी लेनी है, वरदान है कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भ। हाँ वो क्या बनो, कर्म योगी, कर्म करते स्टेज क्या रहे, शक्तिशाली स्टेज पर स्थित होकर रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करना, अनुभव कराने वाले कर्म योगी भाव। आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले हो, योग युक्त होकर कर्म करने वाले हो, कर्म योगी। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव है हो रहा हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपने शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है, चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से अनुभव हो, दूर से ही पता चले। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनैलिटी भी क्या करती है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी, खींचेगी। स्लोगन है, सही राह पर चलने वाले तब सबको सही राह पर चला पाते। तो सच्चे सच्चे क्या बन जाते हो आप, लाइट हाउस, सच्ची सही राह दिखाने वाले, सच्चे रास्ते पर चलाने वाले सच्चे लाइट हाउस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।